अमन ने तारा से पूछा, पिछले जन्म के मुताबिक इस जन्म में भी तुम्हारे पीछे कोई राजा या दानव जरूर होगा जो तुम्हें परेशान करता होगा। अगर वो दानव रूपी राजा तुम्हारी जिंदगी में आ गया है तो तुम्हें बताना होगा, ताकि मैं उस दानव रूपी राजा का अंत कर सकूं। लेकिन अमन की बात सुनकर तारा ने बात पलट दी, क्योंकि वो अमन को नहीं बता सकती थी कि उसकी जिंदगी में ऑलरेडी वो राजा दानव बनकर आ गया है। अगर तारा अमन को दानव का सच बताती तो उसे अमन को अपने परी होने का सच भी बताना होता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर उसने अपने परी होने का सच बता दिया तो उसके कुल देवता उससे नाराज हो जाते, जो वो किसी भी कीमत पर नहीं होने दे सकती थी। तभी मान तारा के पास आया और बोला, जो सवाल भाई ने आपसे किया वही सवाल मेरा भी है। क्या आपकी जिंदगी में उस राजा के जैसा कोई आ गया है? अगर ऐसा है तो आप हमें बता दें। तब तारा ने एक नज़र अमन को देखा, फिर एक नज़र मान को, और फिर उसने मान को भी वही जवाब दिया जो उसने अमन को दिया था। तारा की बात सुनकर दोनों भाइयों ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में कुछ बात की, और फिर मान मुस्कुराकर तारा से बोला, वैसे मिस तारा, डोंट वरी, अगर इस जन्म में कोई उस राजा की जैसा आ भी गया आपकी जिंदगी में तो मैं हूं ना, मैं उसका मार मार कर भुट्टा बना दूंगा। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? अब आप शाम के लिए तैयारी शुरू करो, वरना मॉम आ जाएंगी और कहेंगी कि हम लोग अभी तक एक साथ क्यों हैं। तारा मान की बात सुनकर मुस्कुराती और अमन अपने कमरे में चला गया। तभी तारा अपने कमरे के बिस्तर पर जा बैठी, और जैसे ही वो उठी तभी उसे अपने पास किसी का एहसास हुआ। वो कोई और नहीं, मान था। मान को अपने कमरे में पाकर तारा सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगी। तब मान तारा के एकदम करीब जाकर बोला, ये मत सोचिएगा कि मैंने आपकी बातों पर यकीन कर लिया है। याद रखिएगा, आपका जिस्म, आपकी रूह सिर्फ और सिर्फ हमारी है। आप सिर्फ और सिर्फ अमन और मान की हैं। हम दोनों के अलावा कोई तीसरा आपकी जिंदगी में अगर आया तो मैं बिना कुछ सोचे उसकी जान ले लूंगा, चाहे वो इंसान हो, राक्षस हो, दानव हो या फिर वो राजा हो। हम आप तक किसी को भी नहीं पहुंचने देंगे। हमारे रहते कभी भी आप पर कोई आंच नहीं आ सकती है। मान ने चबा चबा कर एक एक शब्द कहा था। तारा खामोशी से उसकी एक एक बात सुन रही थी। तभी तारा ने मान से कहा, आप बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। अभी ऐसा कोई नहीं है जो मुझे परेशान कर सके, क्योंकि किसी ने भी मेरे जिस्म को नहीं छुआ है। तारा के झूठ में भी सच था, क्योंकि अपने मिले हुए वरदान के कारण उस राक्षस के साथ रात गुजारने के बाद वो फिर से कुमारी हो चुकी थी, इसलिए तारा के बोले गए झूठ में भी सच छिपा हुआ था। मान ने तारा की बात सुनकर उसे कहा, अगर कुछ भी ऐसी बात है तो वो उसे बता दे, वो सब संभाल लेगा। और इससे पहले कि तारा कुछ कहती, तभी करिश्मा जी मान को आवाज़ लगाने लगी, मान बेटा आ जाओ जल्दी, नाश्ता तैयार है। मान तारा को भी नाश्ते के लिए कहने लगा और बोला, आप भी फ्रेश होकर आ जाइए, आपको भी भूख लगी होगी, उसके बाद मेहंदी का फंक्शन भी होना है और फिर रात को शादी। तारा ने हाँ में सर हिला दिया। इस शादी का तो उसे न जाने कब से इंतज़ार था। इस शादी के लिए ही तो वो यहाँ एक मामूली इंसान की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर थी। तारा अब थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर रही थी, क्योंकि उसकी शादी आज नेकल इंसान से होने वाली थी, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी शादी में रुकावट बनकर वो बिच्छू पहुँचने ही वाला था। तारा अच्छे से नहा धोकर फ्रेश हो गई थी, और जैसे कि आज दिन में उसे मेहंदी लगने वाली थी, इसलिए तारा ने हल्के ग्रीन रंग का लहंगा और चोली पहना था। तारा का मन राधा के जैसे तैयार होने का कर रहा था, इसलिए तारा ने बिल्कुल राधा के जैसे ड्रेसअप किया था। उसने हल्के ग्रीन रंग का लहंगा और लाल और हरे रंग की खूबसूरत सी चोली पहनी थी, और अपने रेशमी बालों को अच्छे से गूंथकर उसमें बड़ा ही खूबसूरत सा परांदा डाला था, और उसने राधा की तरह ही अपनी बड़ी सी चोटी को आगे डाल लिया था। तारा ने एक बार खुद को आईने में देखा, उसे लगा कि ये तारा नहीं बल्कि वही राधा है, मोहन की राधा। खूबसूरत सा पतला सा खूबसूरत जिस्म और बड़ी बड़ी आंखें, कुल मिलाकर वो हूबहू परी लग रही थी। तारा खुद को आईने में देखकर शर्मा रही थी। वेल, तभी करिश्मा जी नाश्ते के लिए तारा को बुलाने वहां आ गई थी, और वो तारा को ऐसे लुक में देखकर चौंक गई थी और आते ही कहने लगी थी, अरे वाह बेटा जी, तुम तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो। ऐसा कहकर करिश्मा जी ने अपनी आंखों से काजल छुटाकर तारा के कानों के पीछे लगा दिया था। तब करिश्मा जी ने तारा से कहा, बेटा तुम जानती हो, आज तुम्हें इन कपड़ों में देखकर मुझे किसी की याद आ गई है। तब तारा चौंक कर, तभी करिश्मा जी कहीं खोसी गई थी। तब तारा ने उन्हें कहा, मॉम करिश्मा, मॉम, जब से तारा और अमन मान की शादी की बात शुरू हुई थी तब से करिश्मा जी ने तारा को सख्ती से मना कर दिया था कि वो उसे मैम नहीं बल्कि मॉम ही बुलाए, इसलिए तब से तारा करिश्मा जी को मैम ना कहकर मॉम ही कहा करती थी, जैसे अमन और मान कहते हैं। तब तारा ने कहा, क्या हुआ मॉम, आप कहाँ खो गई हैं और क्या सोचने लगी हैं? तब इससे पहले कि करिश्मा जी कुछ बोलती, मान सिंह राठौर के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, मॉम मॉम मॉम, कहाँ हैं आप, जल्दी आइए, हमें भूख लगी है। तब करिश्मा जी, ओहो देखा तूने, मेरा एक और बेटा नाश्ते की टेबल पर बैठा हुआ है, लेकिन उसने मुझे एक बार भी आवाज़ नहीं दी, लेकिन ये मेरा दूसरा बेटा एक नंबर का जिद्दी है, हमेशा चिल्ला चिल्ला कर सबसे पहले अपने काम करा लेता है। करिश्मा जी मान के बारे में बोलते हुए मुस्कुरा दी और बोली, आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ तुम भी और नाश्ता कर लो, फिर हम तुम्हारी मेहंदी का फंक्शन शुरू करते हैं। ऐसा कहकर करिश्मा जी ने प्यार से तारा का गाल थपथपाया और चली गई। तब तारा सोचने लगी, मेरे इस तरह के कपड़े पहनने से आखिर करिश्मा मॉम को किसकी याद आ गई थी। इन्हीं सोचों में गुम्बो बाहर आ गई। सबसे पहले अमन की नज़र तारा पर पड़ी। अमन तो मानो कहीं खोसा गया हो। तारा एकदम राधा के जैसे लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पिछले जन्म की राधा इस जन्म में आ गई हो। अमन को एक और देखते देखते मान ने भी अमन की नज़रों का पीछा किया। उसने सूप पीने के लिए चम्मच उठा रखा था। तारा को देखते ही उसके हाथ से चम्मच छूटकर जमीन पर गिर गई। वो दोनों बड़ी ही देर तक बेख्याली में तारा को देखते रहे। तभी करिश्मा जी अपने हाथ में जूस के ग्लास थामे वहां आ गई। करिश्मा जी अपने बच्चों के लिए जूस वगैरह खुद ही बनाया करती थी। इस तरह से उन दोनों को तारा की ओर देखते हुए वो मुस्कुरा दी और उन्होंने जानबूझकर अपनी ट्रे में रखी हुई एक चम्मच फर्श पर गिरा दी। अचानक हुए चम्मच के शोर से वो दोनों भाई अपने बेहद हसीन ख्वाब से बाहर आ गए। तारा उन दोनों की हालत को देखकर मुस्कुरा दी। तभी करिश्मा जी ने उन दोनों के एक एक कान पकड़ते हुए कहा, ये सब क्या है, तुम दोनों क्या नजर लगाओगे मेरी बेटी को। और फिर वो तारा से बोली, आ जाओ बेटा, शाबाश, आकर यहाँ बैठो। तारा हाँ में सर हिलाती हुई अमन और मान की कुर्सियों के बीच पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गई। अमन और मान बार बार नजर चुरा कर तारा के देखे जा रहे थे। तब अमन मन ही मन बोला, तारा सिर्फ अमन की है। और मान ने भी यही बोला, तारा सिर्फ मान की है। दोनों भाइयों ने जैसे ही ये मन ही मन सोचा और दोनों को एक ही रूह होने के कारण एहसास हो गया कि वो दोनों एक ही बात बोल रहे थे। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और वो दोनों मुस्कुरा दिए।
तब तारा ने करिश्मा जी से भी कहा, करिश्मा मॉम, आप ही बैठिए ना और नाश्ता कीजिए हमारे साथ। करिश्मा जी भी हल्की सी मुस्कान के साथ बैठ गईं। और तभी करिश्मा जी बोली, बेटा तुम दोनों जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ मेहंदी के फंक्शन के लिए। अब दिन में हम लोग मेहंदी करेंगे और फिर रात में शादी। तुम दोनों जाओ और जल्दी आना ताकि जल्दी ही मेहंदी की रस्म शुरू की जा सके, क्योंकि अब बस तुम दोनों के तैयार होने की देर है, क्योंकि तारा बेटी तो कब से तैयार है। ऐसा कहकर वो तारा की बलाई लेने लगी। तब तारा आंखों में उदासी लाते हुए बोली, क्या करिश्मा मॉम, क्या मेरे मेहंदी का फंक्शन ऐसे ही होगा, कोई भी रौनक नहीं होगी। तारा की उदासी अमन और मान का दिल चीर रही थी। तभी करिश्मा जी ने कहा, तुम क्यों उदास होती हो बेटा, मैं हूं ना, मैं अभी इस पूरे बंगले को मेहमानों और ढेर सारी सजावट से भर दूंगी। तब तारा, लेकिन मॉम वो सब तो जादुई मेहमान होंगे ना, मुझे जादुई मेहमान नहीं, असली वाले मेहमान चाहिए। जादुई मेहमानों से सब कुछ नकली नकली सा लगता है। मैं भी चाहती हूँ मेरी शादी में सब लोग आएं, आस पड़ोस से लेकर मेरे ऑफिस के दोस्त कलीग सब आएं और सब अपनी रियल दुआ रियल आशीर्वाद हमें दें। तारा की बात सुनकर वो तीनों माँ बेटे एक दूसरे के मुँह की ओर देखने लगे। तब करिश्मा जी, मैं जानती हूँ बेटा तुम एक इंसान हो, तुम्हारे कितने ही अरमान हैं, लेकिन बेटा तुम बात भी समझो, अगर दुनिया वाले इस शादी में आए तो उनके साथ न जाने कितनी काली शक्तियां इस शादी में आ जाएंगी, क्योंकि कितने ही काली शक्तियों वाले अपनी बुरी नज़र गड़ाकर बैठे हुए हैं उस तिलिस्मी पत्थर पर। अब इससे पहले कि तारा कुछ कहती, अमन बीच में बोल पड़ा, मॉम अगर मिस तारा चाहती है कि हमारी शादी दुनिया के सभी लोगों के बीच हो तो ऐसा ही होगा, अब हमारी शादी सब लोगों के बीच ही होगी। ऐसा कहकर अमन और मान ने बात फाइनल कर दी थी। लेकिन